ओम शांति। मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है और आज मार्गदर्शन में हमारे बीच उपस्थित हैं विभिन्न कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए ऐसे उद्यमी जो निरंतर कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी ऐसी ही एक सिद्ध साधिका और आत्मा परमात्मा के बीच निरंतर सेतु का काम करने वाली, जो अपने सद्भाव से, अपने सद्वचन से और अपने ज्ञान से पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर निरंतर व्यापक जनसमूह को लाभान्वित करती रहती हैं। रानी दीदी, इस मार्गदर्शन में आप ऐसे लोगों के बीच हैं, ऐसे उद्यमी के बीच हैं। आज ये उद्यमी अपनी निजी परेशानी के साथ ही साथ अपनी व्यावसायिक परेशानियों को लेकर भी कई अनसुलझे प्रश्नों के हल के लिए आपके पास उपस्थित हैं।
ओम शांति। मैं धीरज कुमार। वैसे तो हम लोगों के व्यवसाय में बहुत सारी कष्ट, बहुत परेशानी होती है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट हम लोगों को लेबर तबके से होता है, जो बहुत नीचे हैं, उसको संभालना, समझाना, इस समय बहुत सारी कठिनाई होती है, जिसके सामने हम लोग विवश हो जाते हैं, तब उस समय हमको बहुत कष्ट होता है, जिसका हमको निवारण।
जितने भी लेबर हैं आपके पास, उन सबको पहले तो आत्मिक दृष्टि से देखिए, ये सब आत्माएं हैं, ठीक है, और उन सबको संगठित करके कुछ खुश करने वाली बातें उनसे करिए, जिससे वो थोड़ा प्रसन्नचित्त हो जाएं। ऐसी कुछ बात उनके सामने करिए, कुछ ऐसा उच्चारण उनसे करवाइए, जैसे ओम शांति का उच्चारण सब मिलकर के बोले, उन्हें कुछ आत्म अनुभूति की बात भी सुनाइए, उनको लगे कि ये हमारे काम की बात है, ये हमारे अंदर एक शक्ति भरने की बात है। हरे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। लेबर है इसलिए सम्मान नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं, उनको भी अपना बड़ा सम्मान है, और बड़ों का काम ही है उनको अपने बच्चों की तरह हरे को सम्मानित भी करना, सम्मान भी देना, प्यार भी देना, और वो जो कार्य कर रहे हैं उसका उन्हें शाबाशी भी देना, क्योंकि अथक मेहनत, सुबह से रात तक अथक मेहनत वो करते हैं, तो इतना उनके प्रति अगर सहानुभूति है, दया भाव है, कृपा दृष्टि है, प्रेम है, तो क्या होगा, वो अथक मेहनत करके आपका काम पूरा कर देंगे। जो आप पैसा देते हैं उतना काफी नहीं है, उन्हें प्यार और सम्मान भी चाहिए, दुलार भी चाहिए, वो भी उनकी आवश्यकता है, हर आत्मा को चाहिए। अगर आपके मन में भाव आएगा तो वो सब आपके लिए कुर्बान हो जाएंगे। ऐसा भाव अगर मन में जगा लें तो हम समझते हैं कि मन सदा प्रसन्नचित रह सकता है। उनके भी कुछ दुख दर्द है घरेलू, वो भी बैठ के सुन लेने हैं, वो भी सुनना है, उनको लगे कि हमारे गार्जियन है ये, हम इन्हें अपना कोई कष्ट सुना सकते हैं, इनसे हमको समाधान मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, उनको ये विश्वास हो जाए हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ चाहिए तो इनके पास जाने से हमारा समाधान होता है। अगर कुछ ऐसी भावना बड़ा दिल उदार हृदय अपना बना लें तो उसमें वो भी उस छत्र छाया में सुख की अनुभूति करेंगे और शक्ति की अनुभूति करेंगे।
हम अपने सहयोगी मजदूर और कामगारों के साथ किस तरह का व्यवहार करें, दीदी ने बता दिया, वे सब आत्मस्वरूप हैं, उनमें भी निहित वही आत्मा है, सब में हम उसी दिव्यता के दर्शन करें और उससे उसके सुख दुख को भी शेयर करें, उससे जानें उसकी परेशानी, और तदनुरूप उसके साथ अगर व्यवहार करते हैं तो उसका भी आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और वह उस प्रतिष्ठान को, मेरे उद्योग को, अपना मानते हुए उसी तरह से सहयोग करेगा जिस तरह का हम सोचते हैं। हम आपकी ओर लौटते हैं और जानना चाहते हैं आपसे आपका सवाल।
नथनी राय, हम किसी पर विश्वास करते हैं, हम किसी को अपने सच्चे भाव से उनके साथ लगन से उनको चाहते हैं, फिर भी वैसे इंसान हैं जो धोखा के सिवा या फर्जी के सिवा कुछ दे नहीं पाते हैं।
देखिए, विश्वास तो करना ही चाहिए, ठीक है। विश्वास करके हम अपनी जिम्मेवारी ना छोड़ दें। कोई हमको विश्वास दिलाता है ये काम हम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ये नहीं कि हम विश्वास ना करें। विश्वास तो करें ही, लेकिन धोखा तो वहां होता है विश्वास करके हम अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेवारी को कम कर देते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को आप निभा रहे हैं, उन पर भी आप विश्वास कर रहे हैं। कोई एक दो ऐसे निकल गए जिन्होंने विश्वास के अनुसार जैसा कहा वैसा नहीं किया, उसकी परवाह नहीं करी है। बाकी सब तो ठीक है ना कोई तो ऐसे भी निकल आएंगे, लेकिन अपनी दृष्टि, अपना भाव सब पर विश्वास करने का बना रहे। ये नहीं, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये कभी ठीक होने वाले नहीं है, ऐसा कभी बोले ही नहीं। आपके मन में चाहे हो कि ये सुधरते नहीं है, लेकिन आप उन्हें ये जरूर कहें कि आप जो बोलते हैं ऐसा जरूर करके दिखाओगे, हमको विश्वास है। हमेशा बोलते रहिए, हमारी वाणी और हमारा चिंतन ही सारा काम करता है। आप जैसा कह रहे हो उसे अच्छा आप करके दिखाओगे। अगर आपने कह दिया ये कभी सुधरने वाले नहीं है, तो क्या प्रभाव होगा उन पर? इसलिए ऐसा कभी बोलना ही नहीं है, हमेशा हर एक के ऊपर। किसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है हम इतना काम कर देंगे, बीमार हो गया, शरीर से लाचार हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ कारण भी तो बन जाते हैं कि वो व्यक्ति भी चाह के उसको पूरा नहीं करता। इसलिए हर बात को समझकर और हमेशा मुख से शुभ बोलें और मन में भी शुभ चिंतन करें, तो हम समझते हैं कि हमारे साथ काम करने वालों को एक हमारे द्वारा शक्ति प्राप्त होगी।
यह होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। सामने वाला लाख बार बोला हो, वह बार बार हमारे साथ विश्वासघात करें, लेकिन उसके आचरण के साथ हमारा आचरण भी विश्वासघाती हो जाए, यह कदापि नहीं होना चाहिए। वह विश्वासघात करे, हम उसे विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखते हुए फिर उससे अच्छी की उम्मीद निरंतर पाले रखेंगे। यह तभी होगा जब हम अपनी एकाग्रता के साथ शांत चित्तता को प्राप्त कर लेते हैं, और यह सार्थक और जीने की कला यही तो है कि सामने वाला चाहे जो हो लेकिन हम उसके प्रति सद्भाव रखेंगे और पॉजिटिव ही सोचेंगे। करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हो सकता है कि बार बार विश्वास करने के कारण एक दिन वह विश्वासघात करने वाला विश्वास के रास्ते पर आ जाए। हमारी कोशिश निरंतर जारी रहनी चाहिए। हम लौटते हैं आपकी ओर और जानना चाहते हैं आपका सवाल।
दीदी बोले ना जे विश्वास करो उस पर, उसको प्रतिष्ठा दो, उसको आदर से देखो, आदर भाव से देखो, लेकिन दीदी कितना कुछ कीजिएगा लेकिन वो सब बदलने वाला नहीं है। वो हमसे भी पैसा ले लेगा, इनसे भी पैसा ले लेगा, उनसे भी पैसा ले लेगा। फलना बाबू के तो हम इतना काम कर दिए, उनका इतना बड़ा उद्योग हम चला दिए, हमारे बाल बच्चा मिलके चला दिया, इनके यहाँ जाएगा तो इनके पैसा बोलेगा, उनके यहाँ जाएगा उसके बोलेगा, उससे कोई अंतर नहीं उसमें पड़ता।
आपका काम है रहम दिल, वो ऐसा करे तो भी आप उन पर रहम की दृष्टि रखिए। लोगों ने भगवान से क्या कहा, हम पर दया दृष्टि रखो, कहा है ना। और भगवान का काम हम सबको करना है, क्या करना है, सब पर दया दृष्टि रखो। गरीब है ना, इससे भी ले लिया उससे भी ले लिया, तो भी मन में उसकी कोई शिकायत नहीं रखना है, फिर भी तो उनसे ही काम कराना है, फिर तो वही सामने आएंगे, ठीक बात है। इसलिए अपने मन में रहम की भावना बनाए रखें, दया दृष्टि बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनी रहे हर एक पर। भगवान की महिमा यही है, दयालु कृपालु, यही है ना। हम उनके बच्चे क्या करेंगे, जैसा हमारा परमात्मा पिता वैसे हम बच्चे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं बहुत समर्थवान तो है नहीं, तो गरीब हैं, उनके पास तन है तो तन से मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम हमारी मीठी दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे और उनकी छोटी छोटी गलतियों पर ज्यादा ध्यान न दें, तभी हम उनके साथ परोपकार का काम कर सकेंगे।
जैसे माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते चलते हैं, उसी तरह से अगर हम उद्योगपति हैं, किसी उद्योग के हम स्वामी हैं और हमारे मातहत काम करने वाले हमारे बच्चों की तरह हैं, हम उनके संरक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, तो उनके न्यूनाधिक अपराधों को हमें क्षमा करने का स्वभाव विकसित करना चाहिए। और विश्वास तो फिर करना ही पड़ेगा, संसार सिर्फ अविश्वास से ही नहीं विश्वास से चलता है। झूठ फरेब का बोलवाला कुछ दिनों तक रहता है, सत्य की जीत हमेशा होती है। आदमी की दृढ़ता, आदमी का भाव, और आप भी अपने जीवन में महसूस करेंगे, एक बार कोई सांचा ध्वस्त हो जाता है, एक बार मिट्टी का लोदा ठीक आकार नहीं प्राप्त करता है, एक बार ईंट अच्छी नहीं पकती है, इसका ये अर्थ तो नहीं हो जाता है कि ईंट पकाना हम छोड़ दें, तब तो बिल्डिंगें नहीं बनेंगी। इसलिए विश्वास हर स्थिति में हमारा बना रहे, सामने वाला भी किसी दिन सचेत होगा और हमारे विश्वास की रक्षा करेगा। अब हम आपसे आपका सवाल जानना चाहते हैं।
शांति, कोई धंधा करने से पहले हर काम कर देते हैं, अंत में धोखा क्यों हो जाता है?
धंधा का धोखा हो जाता है, या जो धंधा आपके साथ करता है वह धोखा दे देता है, या कहीं न कहीं अपनी कुछ कमी रह जाती है वह धोखा दे देता है। धोखा कई कई संदर्भ,
धोखे की तो दुनिया ही है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में धोखा नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ ही होगा। लेकिन आप किसी को धोखा न दें, आप हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करें, जैसे के साथ तैसा। ये कहाँ की नीति है? ये कलयुग की नीति है। कलयुग की नीति है ना, जैसे के साथ तैसा। लोग करना चाहते हैं लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? आप सब पर उपकार करो, गिरे को उठाओ, हर एक को मदद करो, हर एक पे उपकार करो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ आपको जो कहा वैसा नहीं किया, इसी को धोखा कहते हैं ना, है ना, कल करेगा, विश्वास रखो। आपकी दृष्टि उसको बदल देगी। अपनी दृष्टि ऊंची रखें, अपना भाव ऊंचा रखें, याद रखें हमारी जैसी स्थिति होगी इसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। वो देखें ये ईमानदार हैं, ये सच्चे हैं, ये अपनी बात के पक्के हैं, ये हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं, इनकी हमारे ऊपर बड़ी सहानुभूति है। बस ऐसा ही तो मालिक चाहिए सबको, इसकी आवश्यकता है। ऐसा भाव रखेंगे तो आज देखिए, आज सोशल सेवा करने वाले क्या करते हैं, जाके कपड़ा बांट आते हैं, रुपया बांट आते हैं, भोजन बांट आते हैं, कितना धन खर्च कर देते हैं, ठीक है। अपने लेबर पर कुछ ज्यादा अगर चला गया तो इसको परोपकार मानिए, वो भी हमारा काम कर रहा है। हमारे से भी कुछ ज्यादा लिया तो भी मन में धैर्य रखें और उसे मदद करने का भाव जागृत रखें।
इस देह के साथ चलने वाली सांसें कब धोखा दे देती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम जिन्हें अपनी आंख कहते हैं उसकी रोशनी कब धोखा दे देती है पता नहीं चलता है। और इस धोखे का निराकरण जब हम नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम अपनी जीवन यात्रा आगे आगे पूरे विश्वास के साथ बढ़ाए चलते हैं, क्योंकि हमारा होना जिसके कारण हुआ और फिर हमारे न होने के बाद भी वही कारण फिर आने जाने की प्रक्रिया को रखे या न रखे, यह परमात्मा जाने, अंतः कहीं न कहीं हमें विश्वास करना है, और विश्वास के सहारे यह संसार भी चलता है, हमारी गति भी चलती है, हमारी मति भी चलती है।
रामायण नवजोत कुमार सिंह, ओम शांति। आपने जो कहा सारे व्यवसाय के सारे सवालों के जगह पे ऐसे ऐसे धोखा के कारण एक मजदूर वर्ग पे हम रहम कर गए, जो हमारे ग्राहक बैठे हैं खरीदार, अपनी जरूरत पे वो तो हमसे मदद ले लेते हैं, बाद में हमको फिर वो उस समय हम तनावग्रस्त होते हैं, उस पे क्रोध आता है जिसका असर हमारे निजी जनजीवन पे भी पड़ता है, इसके निवारण।
ये भी आपकी बात ठीक है, आजकल कोई भी व्यवसाय के अंदर बहुत तरह की परेशानियां हैं, लोग सामान ले लेते हैं, समय पर रुपया नहीं देते हैं, ये भी है आपकी दिक्कत अवश्य है, फिर भी व्यापारी का अर्थ ही है धैर्य, आपका धीरज ही है जिससे आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं। हर व्यापार के लिए हमने ये देखा है, हर व्यापार करने वाले को बहुत धैर्य की आवश्यकता है, तभी वो अपने कार्य में सफल हो सकता है। ये धैर्यता ही है जो आप अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों के साथ आपका संबंध जुटे हुए हैं, और अगर कोई ये व्यक्ति धोखा देता है तो भी आगे के लिए तो जरूर सचेत होते हैं, अपने कार्य के प्रति अलर्ट रहते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी मानसिक शांति भंग ना हो, सबसे बड़ी बात ये है, मन के अंदर अच्छे विचार रहें, और ऐसा करने वाले के प्रति भी हम मधुरता से उनके आगे पेश आए, मधुरता से उसके साथ व्यवहार करें, और अगर हम उस परिस्थिति में क्रोधित हो गए तो अपने मन की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, अपना मन अशांत हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम भी प्रॉफिट में रहे, दूसरा भी प्रॉफिट में रहे, हम भी तनाव के वश ना हो, दूसरा भी तनाव के वश ना हो। इस प्रकार से अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को अचल, अडोल और मजबूत बनाते हैं, हम धैर्यवान होकर, हम शांत चित्त होकर, प्रेममय होकर के अगर हर एक से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हम समझते हैं ऐसी ऐसी कई कठिनाइयां पार करने का तरीका निकलता ही रहता है और निकलता रहेगा।
दीदी, पैसे की कमी तो आदमी को परेशान कर ही देती है, लगातार ज्यादा आता हुआ पैसा अचानक आने में कमी हो जाती है उसमें, उससे भी परेशानी हो जाती है। तो जीवन और पैसा का तालमेल कैसे, क्या जीवन पैसे के लिए है? पैसा जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन जीवन अगर सिर्फ पैसे पर ही, सिर्फ लाभ पर ही अगर टिक जाए तो फिर जीवन जीने की आखिर कला क्या है?
लाभ तो दो प्रकार का है ना, एक तो हम धन उपार्जन कर रहे हैं, ये लाभ है, और दूसरा लाभ ये है कि हमारे मन की शांति भी बनी रहे, हमारे मन के अंदर शक्ति भी बनी रहे, और हमें कुछ ऐसा राजयोग का अभ्यास करें जिससे हमें परमात्मा की भी मदद मिले। हमने ये देखा है कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, ठीक है, हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई व्यक्ति अपने विचार, हमारी बात सुनने के लिए हमारे सामने आकर उसको स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो ये कार्य व्यवहार में भी मदद हो सकती है, हम परमात्मा को इतना प्रेम से याद करें कि उनकी याद आपके व्यापार में भी मदद करे, आपकी मन स्थिति को भी ठीक रखने में मदद करे, आपके परिवार को भी सुखमय शांतमय रखने में मदद करे। इसलिए योग के बारे में ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए हम लोग यहाँ एक सप्ताह का क्लास कराते हैं। पहला दिन आत्मा के बारे में, मैं कौन हूँ, आज मनुष्य बहुत कुछ जानता है, मैं के बारे में नहीं जानता है, मैं कौन हूँ, परमात्मा है वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, राजा का बेटा राजा होता है, और भगवान का बेटा मैं भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य का द्वार खुला हुआ है, मेरे भंडार भरने वाला स्वयं परमात्मा है। अगर ऐसा विश्वास अंदर में जागृत हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हम समझते हैं हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आ जाती है। तो हम आप सबको कहेंगे एक सप्ताह अपने बारे में, आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, ये सारा ज्ञान, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, इसके बारे में जाने। परमात्मा की पहचान हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें याद दिलाता है संसार एक ड्रामा की स्टेज है, हम यह पार्ट बजा रहे हैं, हर एक्टर का अपना अपना रोल है, हम साक्षी दृष्टा होकर दृश्य को देख रहे हैं, कौन व्यक्ति कैसा रोल कर रहा है, कैसा पार्ट बजा रहा है, लेकिन उसके कर्म का प्रभाव हम पर ना पड़े। एक व्यक्ति गलती करता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे मन की स्थिति श्रेष्ठ बनी रहे, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की आवश्यकता है। इसके समावेश से परिस्थितियों को पार करना आसान हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें छोटी हो जाती
है। आदमी कभी कभी निराश हो जाता है और इतना निराश हो जाता है, इस हद तक निराश हो जाता है कि वह अकेले रहने लगता है, इतना अकेले रहने लगता है कि उसका दुख सुख सब उसको एक जड़ता और कुंठा की स्थिति में ला देता है। तो एकांत प्रिय होना और अकेला होना और सबसे कटकर अकेला हो जाना और अपने में ही सिमट कर रह जाना, क्या यह अच्छा है या हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए?
एकांत प्रिय तो योगी भी हुए, ऋषि भी हुए, तपस्वी भी हुए, लेकिन उन्होंने एकांत का आनंद लिया। वो जब अकेले बैठे तो उन्होंने भगवान को अपने सामने पाया और उन्होंने महसूस किया ईश्वर है और मैं हूं। वो अकेले नहीं रहे, वो परमात्मा के साथ रहे, उनके साथ बैठे, उनकी याद में बैठे, आनंद लिया। एक व्यक्ति नाराज होकर रूठ कर अकेला हो जाता है, उसके साथ उसका दुख, उसकी समस्या, उसकी परेशानी, केवल उसी का चिंतन करता है। एक व्यक्ति कहता है मेरे को अकेलापन महसूस होता है, लगता है मेरे घर में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, ये डिप्रेशन की स्थिति है ना? और योगी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि वो अपने सामने अपने परमात्मा को देखता है और उनसे शक्ति लेता है। हम समझते हैं अगर हम ऐसे एक परमात्मा के प्रेम में मगन रहते हैं तो हमारे कार्य व्यवहार में, व्यापार में वो परमात्मा की याद मदद करती है और हमारी अनेक समस्याओं का समाधान उस योग से हो जाता है। इसलिए योग और उद्योग, उद्योग में भी योग शब्द है, सहयोग में भी योग शब्द है। तो योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह ही योग नहीं है, योग का मतलब है अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना, योग है। और जिसका संबंध वहां जुटा हुआ है अर्थात वो सर्वशक्तिवान है तो हम शक्ति स्वरूप है, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती रहेगी और उनकी शक्ति से हम काम करेंगे। अभी तो हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं और योग के द्वारा हम परमात्मा की शक्ति से काम करेंगे और ऐसा कार्य करने वाले का उद्योग पर प्रभाव होगा, उसका सबको सहयोग प्राप्त होगा और वो सारे कार्य करते हुए अपने से भी संतुष्ट होगा, अपने कार्यकर्ताओं से भी संतुष्ट होगा।
हमारा कार्य व्यापार योग को ही ध्वनित करता है, वह उद्योग है और हम उसके अंतर्गत कितना जोड़ते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, दिन रात सोचते हैं, फिर आप मनुष्य के समूह को जोड़ते हैं, कई कई वस्तुओं को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए अपनी तल्लीनता, अपनी तत्परता और अपना सब कुछ उसे जोड़कर लाभ हानि का गणित जोड़ते हुए फिर लोगों के साथ उसका विनिमय करते हैं, हम उसका आदान प्रदान करते हैं। तो दीदी ने योग और उद्योग का जो सामंजस्य बैठाया, तो आप कहीं न कहीं से कैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप उद्योग करते हैं, आप उद्योग करने वाले हैं, तो स्वतः एक योग घटित होता रहता है, लेकिन उस योग को पॉजिटिव रास्ता देने की जरूरत है, आत्मा के पास स्थित करने की जरूरत है और स्वयं को देह न समझकर आत्मा समझे। दीदी, हमारा जो अंतर्भाव होता है हमारे चेहरे पर प्रकट हो जाता है, अगर हम दुखी हैं तो दुख की छाप आ जाती है, क्रोधी हैं तो आंख में रक्तिमता उतर जाती है। जीवन के लिए हंसी की अनिवार्यता और फिर चेहरे पर गंभीरता की छाप, दोनों
मन में शुभ विचार हो तो चेहरा हर्षित रहेगा, मुख हर्षित रहेगा अशुभ विचार होंगे तो चेहरे पर आएंगे, क्रोध होगा तो चेहरे पर आएगा, और अगर शांत भाव होगा तो शांति चेहरे पर आएगी। अगर आपको ये काम दे दिया जाए कि सबको खुशी बांटिए, क्या करेंगे? वस्तु बांटना आसान है, आपने वस्तु इकट्ठी कर ली और सबको बांट दिया, लेकिन खुशी बांटना, खुशी आप तभी बांट सकेंगे पहले अपना मन खुश हो। खुशी बांटने के लिए हमें एक एक के गुण देखना और गुण वर्णन करना जरूरी है। जो व्यक्ति हमारे पास है उसके गुणों को देखें और गुण बोलें, वर्णन जरूर करें। ये बहुत एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, ये बहुत समय पर पाबंद होकर कार्य करते हैं, ये बहुत दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। अगर हमारे मुख से उनके गुण गायन होते हैं, उसी से सबको खुशी मिलेगी।
और उनमें गुण देखने का दृष्टिकोण विकसित करने की अनिवार्यता है, और सब में जिस दिन हम गुण देखने लगेंगे निश्चित रूप से हमारे अवगुण अपने आप ही किनारे हटते चले जाएंगे। आज आपके सवालों का जवाब वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी ने दिया। उस जवाब के पीछे ज्ञान का वैभव है, उसकी श्री संपन्नता है। दीदी आपने मार्गदर्शन में छोटी छोटी समस्याओं का, लेकिन वे उद्योग के लिए गंभीर समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, आपने जिस सहजता के साथ अगर उसका प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें, तो आने वाले समय में इनकी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। और आपने अपने प्रश्नों का जो हल प्राप्त किया, अभ्यास कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में भी अवश्य सफलता मिलेगी। आप आए, दीदी को बहुत आभार, और आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।